सभी श्रोता मित्रों को स्वतंत्र कुमार ओझा का नमस्कार। युग संचार, आज के हमारे युग संचार कार्यक्रम का शीर्षक है लोक कथाएं संचार की रोचक माध्यम होती हैं। लोक कथाओं के महत्व को कभी भी कमतर नहीं कहा जा सकता है। प्रत्येक देश का अपना साहित्य होता है, उसकी अपनी भाषा होती है और इनमें लोक कथाओं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, अवदान होता है, क्योंकि लोक कथाएं हर जन को मनोरंजन और नैतिक ज्ञान देती हैं और विशेष रूप से ये जनसाधारण को बेहद प्रिय होती हैं। इन कथाओं के पात्र काल्पनिक, सजीव या निर्जीव, हास्य से भरपूर या फिर पशु पक्षी भी होते हैं। तो उस युग की संचार वाहिनियां हैं ये लोक कथाएं, जब विज्ञान और तकनीक अपनी शैशव अवस्था में थे। उन दिनों में शाम ढलते ही गांव के चौपाल पर लोग इकट्ठे हो जाते, कभी तोता मैना के किस्से, कभी बेताल पच्ची सी, तो कभी पंचतंत्र की कथाएं। हमारा भारतीय साहित्य जितना प्राचीन है उतनी ही प्राचीन हैं ये लोक कथाएं। तो आज के हमारे इस आलेख में हम पंचतंत्र की कथाओं पर कुछ वार्तालाप करेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को ये वार्तालाप रोचक लगेगा, क्योंकि ये कथाएं चतुराई और बुद्धिमत्ता से भरपूर हैं और लगभग 15 शताब्दियों से वर्तमान युग तक जनसाधारण में बेहद लोकप्रिय हैं। पात्रों के रूप में पशु पक्षी के दृष्टांत पर इनको लिखा गया है। इनकी विशेषता यह है कि इसकी प्रत्येक कथा मानव की जीवन शैली का, उसकी अच्छाइयों और बुराइयों का जीवंत चित्रण करती हैं। मित्रों, विश्व के हर वर्ग और उम्र के लोग सदियों से इन कथाओं के वशीभूत रहे हैं। ऐसा भी माना जाता है कि पवित्र बाइबल के बाद संभवतः पंचतंत्र ही ऐसा ग्रंथ है जिसका अनुवाद विश्व की सर्वाधिक भाषाओं में किया गया है और ये सभी जन इसे पढ़कर या इनका मंच या पर्दे पर चित्रण देखकर अभिभूत हुए हैं। इसी कारण इसे यानी पंचतंत्र को मानवता का शाश्वत नीति शास्त्र भी कहा जाता है। पंचतंत्र को संसार में जितने भी गैर धार्मिक ग्रंथ हैं उनसे कहीं अधिक लोकप्रियता मिली है, यानी इतना लोकप्रिय ग्रंथ है और इसकी कथाएं खास करके। अब पंचतंत्र का अर्थ क्या है ये हम जानेंगे। पंचतंत्र में पंच का मतलब होता है पांच और तंत्र का अर्थ या कहें कि आशय होता है जीवन के आचरण के नियम और मनुष्य अपने कर्मों का निर्धारण किस तरह करे इसका विधान। इन दोनों महत्वपूर्ण क्रियाओं की लोक कथाओं के माध्यम से व्याख्या की गई है कि भाई इंसान को अपना एक नैतिकता से भरा जीवन, एक अच्छा जीवन, अच्छे कर्मों से भरा जीवन किस प्रकार जीना चाहिए, इनको कथाओं के माध्यम से बताया गया है। पंचतंत्र के लेखक का नाम है आचार्य गुरु विष्णु शर्मा। कहा जाता है कि जिस समय उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की वे 80 वर्ष से भी अधिक उम्र जी चुके थे। लेखन से पहले उन्होंने अपने से पहले के विद्वानों और नीति शास्त्रियों की लिखी रचनाओं का गहरा अध्ययन किया, खूब पढ़ा उनको, जो उनके पहले के विद्वानों ने जो लिखा था, और उसके पश्चात ही उन्होंने अपने शिक्षाप्रद ग्रंथ पंचतंत्र की रचना की। अब पंचतंत्र लिखने की प्रेरणा, क्योंकि देखिए जब भी कोई व्यक्ति कुछ ऐसा नवीन करने की इच्छा रखता है, उसके मन में कुछ ऐसा आता है कि मैं कुछ ऐसा नया करूं जिससे कि सारे संसार को लगे कि क्या एक बिल्कुल एक नई और एक अनोखी बात सामने आई है, तो उसके लिए जो प्रेरणा होती है, तो वही प्रेरणा पंचतंत्र लिखने की लेखक को कैसे हुई, इसके पीछे भी एक कहानी बताई जाती है। और वो कहानी ये है कि दक्षिण के महिला रोप्य नाम के गांव में एक उत्कृष्ट राजा महादानी, जिसका नाम था अमर शक्ति, वो राज्य करता था। उसके तीन पुत्र थे, उनके नाम थे बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति। अब देखिए नाम तो इतने अच्छे अच्छे, बहुशक्ति, उग्र शक्ति, अनंत शक्ति, लेकिन तीनों ही वज्रमूर्ख और छिछोरे थे, बिल्कुल किसी काम के नहीं। इस कारण उनके पिता यानी राजा बड़े दुखी रहते थे। तो इस बारे में उन्होंने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। मंत्रियों ने एक स्वर से तीनों राजकुमारों को बुद्धि और विद्या दान के लिए आचार्य विष्णु शर्मा को नियुक्त करने की सलाह दी। राजा को बात समझ में आई, आचार्य जी को तुरंत बुलवाया गया। जब वे आए तो राजा ने अपनी समस्या बताई और कहा कि आचार्य, अगर आप इसका हल कर देंगे तो मैं आपको 101 गांव दान में दूंगा। इस पर आचार्य ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं अपनी विद्या का सौदा नहीं करता, लेकिन अगर मैं 6 महीने में इन्हें कुशल राजनीतिज्ञ नहीं बना सका तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। बस साहब, हो गई बात। इसके बाद वे राजकुमारों को लेकर अपने आश्रम चले गए। वहीं उन्होंने एक के बाद एक कहानी का लेखन शुरू किया और लिखने के बाद वो अपनी कहानियां राजकुमारों को सुना दे गए। हरेक कहानी में से 4 अन्य अंतर कथाएं उन्होंने लिखी, तो इस प्रकार इस ग्रंथ का नाम पंचतंत्र पड़ा और राजकुमारों ने विद्यादान पाया। संस्कृत में सन 500 ईस्वी में पंचतंत्र की कथाएं लिपिबद्ध हो गई थी। अब श्रोताओं, पंचतंत्र का अनुवाद यानी ट्रांसलेशन दूसरी भाषाओं में कैसे हुआ, इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। उसी दौर के ईरानी सम्राट अनिशेखा खुसरो के प्रमुख राजवैद्य तथा मंत्री ने कहीं पढ़ा कि भारत में किसी पर्वत पर संजीवनी नाम की एक औषधि मिलती है जिसके सेवन से मृतक भी जी उठते हैं। मंत्री बुर्जुए इसकी सच्चाई जानने के लिए सन 550 ईस्वी के आसपास भारत आया और उसने संजीवनी नाम की इस जड़ी बूटी की तलाश करना शुरू की। भटकता रहा, भटकता रहा, भटकता रहा, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी, कहीं नहीं मिली। हार कर उसने एक भारत के मनीषी से पूछा कि श्रीमान, यहां अमृत मिलता है संजीवनी में, लेकिन वो है कहां? तब उस मनीषी विद्वान ने कहा, जो आपने सुना है वो सत्य है। वास्तव में ज्ञान के रूप में ये औषधि विद्वत्ता के पर्वत पर मिलती है जिसके सेवन से मूर्ख रूपी मृत व्यक्ति फिर से जी उठता है। तो इस प्रकार का अमृत हमारे देश में पंचतंत्र नाम के ग्रंथ में है, आप इस ग्रंथ को ईरान ले जाइए। मंत्री अमरत्व के रहस्य को समझ गया तो वो पंचतंत्र की एक प्रति अपने साथ ईरान ले गया और वहां इसने सम्राट के आग्रह पर इसका अनुवाद प्राचीन फारसी भाषा पहलवी में किया। तो ये कहा जाता है कि ये पंचतंत्र का पहला अनुवाद था। अब वक्त के साथ अनुवाद तो रहा नहीं, लेकिन उसकी कथाएं तब तक बहुत लोकप्रिय हो गई थीं। तो मित्रों, संचार के बहुआयामी पंख, विभिन्न माध्यमों से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की उक्ति को साकार और सार्थक करते हैं। संचार इस रूप में भी जन जन का हितग्राही है। नमस्कार।